राधाष्टमी मनाएंगे। बरसाने शायद कल ही हो रहा है,
कल है बरसाने,
किंतु तिथि के अनुसार में हम लोग चलते हैं। कल राधाष्टमी में पहले थोड़ी सी सप्तमी विद्ध हो गई है कांटा, इसलिए कांटे वाली अष्टमी को छोड़ करके दूसरे दिन यदि 2 मिनट भी अष्टमी हो तो हम दूसरे दिन मनाते हैं। ऐसे ही हमारी परंपराएं हैं, वैष्णवों की परंपराएं हैं, इसलिए हम लोग परसों मनाएंगे। इस विषय में राधा जी के तत्व के संबंध में रामचंद्र जी पहले कुछ बोलिए संक्षेप में।
सब आपको समझ में आएंगे,
5-5, 10-10 मिनट बोलिए, इसके बाद मैं बोलूंगा।
ज्ञान शलाखिया
चक्षु, बहुत सुंदर आप लोग गाते हैं, आप लोगों को बधाई है, बहुत सुंदर गाते हैं और बजाते हैं। मालूम होता है कि आप लोगों को का कोई एक ग्रुप है जो कीर्तन करते हैं, है ना? ठीक।
अज्ञान से ज्ञान शलाखिया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जिकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विदान नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित त्रिदंडी स्वामी उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथाजथ दंडवत प्रणाम। बड़ा गंभीर विषय है और उत्सव का विषय है, श्री राधा जी का आविर्भाव जन्मदिन राधा अष्टमी परसों ही हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हम गौड़िया संप्रदाय के लोग, गौड़िया की ब्यूटी ही यही है, हम राधा रानी पक्षी हैं, हम कृष्ण पक्षी नहीं हैं। हमको राधा जी की सेवा करना यही हमारे लिए परम उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं करनी, इसलिए हम नहीं गाते हैं राधे राधे जपो पर चले आएंगे बिहारी, हमें बिहारी नहीं चाहिए, हमें राधा जी से राधा ही चाहिए। अगर बिहारी जी से भी मांगे तो क्या मांगेंगे, क्या मांगेंगे? श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेल हास मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निधे सब प्रिय चरण किंकरीम करू। हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, आप हैं तो बड़े सुंदर, मुस्कुराते हैं तो दिल ले लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हे श्याम सुंदर, आपके सिर के ऊपर मोर मुकुट जो है वो भी चित खींच लेता है, खींचता होगा जिनका खींचता है, राधा रानी का खींचता है। लेकिन हम तो आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमको अपनी प्रिया जिसके आप रसिक हैं, जिसके आप आगे पीछे डोलते हैं, उसके चरणों की किंकरी कर दो, किंकरी कर दो, किंकरी। किंकरी का मतलब मैं क्या करूं, एक ऐसी भाव में मुझको लाकर खड़ा कर दो कि मैं राधा जी के आगे पीछे ये कहता हुआ कहते हुए डोलूं कि मैं क्या करूं। ये हमारा गौड़िया भाव है, प्रधान भाव है, एकदम उलट भाव है। संसार से तो उलट है ही है, लेकिन आम लोग भक्ति के मार्ग में भी जो चलते हैं उनसे भी बड़ा ही विशेष और उससे भी बड़ा अद्भुत और अनोखा अनूठा है, अलबेला है, विरला है, दिखाई नहीं देता आम जगत में। एक छोटा सा उदाहरण से इस जगत की और उस जगत के अंतर को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। एक बार एक रानी का नौलखा हार जब वो अपने ही महल में स्नान कर रही थी तो पेड़ पे उसने हार टांग रखा था, एक पक्षी उठाकर ले गया, हार पक्षी उठाकर ले गया और रानी बहुत जोर से चिल्लाई। राजा अपनी पत्नी को इससे बहुत प्रेम करता था, उसने सारे राज्य में ये खबर छपा दी, जो मेरे इस पत्नी के नौ लखा हार को वापस लेकर आएगा उसको आधा राज्य दे दूंगा। जब उसको आधा राज्य मिलने की बात हुई तो सारे लोगों ने कहा अगर इस हार को मैं ले आऊं तो मैं आधा राज्य प्राप्त कर लूंगा। छोटे छोटे लोग गगड़िए भी ख्वाब देखने लगे आधा राज्य का। तो इतने में एक दिन एक गगड़िया लकड़ी सिर पे बांधे एक तालाब के पास से, जहां सारे राज्य का मैला आके गिरता था, गुजर रहा था, उसने देखा कि तालाब के बीच में हार दिखाई दिया और वो लकड़ी रखकर उस हार को लेने के लिए ये ना देखते हुए कि तालाब कितना गंदा है कूद पड़ा। लेकिन हार हाथ में नहीं आया। कुछ और लोगों ने देखा अरे हार तो तालाब के बीच में है, सारे लोग छलांग मारने लगे, शहर में खबर मिल गई, शहर के लोग भी छलांग मारने लगे, राजा तक खबर पहुंच गई, राजा भी तालाब के अंदर हार लेने के चक्कर में। इतने में एक कोई महात्मा बहुत उच्च कोटि के नारद सरी के महात्मा वहां से गुजरे, उन्होंने कहा राजन ये क्या हो रहा है, मैं तो बहुत तीर्थ घुमा हूं, ये कौन सा तीर्थ है, यहाँ सारा आपका देश स्नान कर रहा है। वो बोलता है महाराज इस तीर्थ का नाम है आधा राज्य, आधा राज्य इस तीर्थ का नाम है। तो वो बोलते ये आधा राज्य, उस महात्मा ने राजा को बहुत डांटा, देखो तुम लोभी, तुम पत्नी भक्त, वैसे ही तुम्हारी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, तुमने अपने राज्य में सारी प्रजा को ऊपर उठाने की बजाय गंदे तालाब में डुबो दिया है एक छोटे से हार के पीछे। अरे बेवकूफों, हार यहाँ पानी में नहीं है, तालाब में नहीं है, देखो वो ऊपर पेड़ पे टंगा हुआ है, बार बार उसकी छाया देखते हो, हार लेने के लिए तुम इस तालाब में छलांग मारते हो। ऐसे ही ये संसार है, संसार में सब लोग संसार में सुख लेने के लिए इस कीचड़ वाले संसार में छलांग मारते हैं, लेकिन ये जो सुख है ये एक झलक है। असली सुख कहाँ है, वो उस दिव्य जगत में है जिसे भगवत धाम कहते हैं। असली जगत काम वासना में नहीं है, असली जगत प्रेम में है, ये प्रेम भगवान के संग किया जाता है। संसार में जो हम प्रेम देखते हैं वो गंदे तालाब में उस सच्चे प्रेम की एक झलक है। तो असली प्रेम प्राप्त करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम खोज करते हैं ऐसा कोई प्रेमी मिले जिस प्रेमी के संग जुड़कर हमारे अंदर वो प्रेम आए। उस प्रेम की जीती जागती मूरत और कौन है, वही है स्वयं राधा रानी, जो ऐसा प्रेम करती हैं, जो ऐसा प्रेम करती हैं कि आत्म काम और आत्मा राम मदमस्त हाथी के उसको भी अंकुश करके अपने वश में कर लेती हैं, जिसे कृष्ण कहते हैं। कृष्ण के चित्त को आकर्षण करने वाली ऐसी दिव्य क्रीड़ा करने वाली अगर कोई जगत में है वही राधा रानी है। राधा रानी प्रेम का इस तरह से अपनी सेवा देती हैं कृष्ण के आगे कि कृष्ण जो है वो वशीभूत हो जाते हैं। मुझे ध्यान है कि कुछ साल पहले हमारे श्री गुरुदेव ने मथुरा में एक विद्युत सभा रखी थी, उस विद्युत सभा में एक प्रश्न रखा था, ये प्रश्न था कि श्रीमद् भागवत का जो विषय है, स्थापित विषय जो श्रीमद् भागवत में स्थापना की गई है वो क्या चीज है। कुछ लोगों ने कहा श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही भगवान स्वयं है, और उस सभा में श्री गुरुदेव ने सब चीजों के ऊपर अपना विचार रखते हुए कहा श्रीमद् भागवत ये कहती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये बात तो सही है, लेकिन इन सब से ऊपर वो प्रेम है, प्रेम जो कृष्ण और राधा जी दोनों को नचाता है, इसलिए प्रयोजन के रूप में प्रेम ही प्रयोजन है। तो वो प्रेम जो राधा और कृष्ण को भी नृत्य कराता है उसकी जो आश्रय है वो राधा रानी है। उस प्रेम की आश्रय राधा रानी है और उस प्रेम का जो विषय है वो कृष्ण है। इस तरह से ऐसे आश्रय स्थल पर जो प्रेम की आश्रय है, जब हम अपना अपने को उनके चरणों में डालेंगे तो हमारे अंदर भी उस प्रेम की उस प्रेम का गुण आएगा। तो ये गुण कैसे आएगा? जब राधा रानी जी के प्रिय हैं, उनके चरणों में हम झुक जाएं, उसको ही गुरु कहते हैं। अगर हमको ऐसे गुरु मिल जाते हैं तो हम बहुत भाग्यशाली। गुरु तो बहुतों को बहुत जगह मिलते हैं। मैंने कहा ना कि भक्ति के मार्ग में भी तरह तरह के गुरु हैं, तरह तरह के विचार हैं। कृष्ण में कृष्ण की भक्ति के भी तरह तरह के विचार हैं। हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाने वाले 2.5 लाख आदमी हर महीने जाते हुए दिखाई देते हैं, जय गिरिराज जी की बोलते हैं, लेकिन उस गोवर्धन के अंदर विशेष राधा कुंड की क्या महिमा है और उस वृंदावन में रास की क्या महिमा है, ये सारी की सारी राधा रानी वाली जो महिमा है वो हमको गुरुदेव से ही पता चल सकती है। जो जो राधा रानी हमारे पास भेजे वो ये है कि हम कृष्ण की भक्ति करने नहीं आए, हम कृष्ण की सेवा करने नहीं आए, हम राधा रानी की सेवा करने आए हैं। राधा रानी को कृष्ण से मिलाएंगे, कृष्ण को आनंद मिलेगा और उससे कई गुना ज्यादा आनंद राधा रानी को मिलेगा और वही आनंद जो है उनके सेविकाओं को मिलेगा। यही हमारा प्रयोजन है। बहुत प्रेमानंद
बहुत
आप कुछ संक्षेप मोली वंदना कम एक दो लाइन
ज्ञान केन्द्रानंद से ज्ञानांजन शलाके चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने श्री गुरु पाद पद्म के शरण कमलों में नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अशोक विष्णुधत्ति ब्रह्मधुरी गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणति करते उनकी अहतुई कृपा की वांछा करता हूँ। अपने परम प्रिय भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणति करते उनकी अहतुई कृपा की वांछा करते हुए सभा में उपस्थित सभी भक्तों के वैष्णव वैष्णवों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। राधा अष्टमी के विषय में बोलना तो बहुत दूर की बात है। गुरुदेव की कुछ ऐसी अहतु की कृपा है कि ये कृपा इस विषय में यदि कोई गूंगा भी होगा वो भी बोलना शुरू कर देगा। राधा रानी की महिमा अपार है, लेकिन उससे भी ज्यादा अपार गुरुदेव की कृपा है। कृष्ण एक रस समुद्र है। समुद्र से बड़ी तो कोई उपमा हो नहीं सकती है संसार में, तो इसीलिए कृष्ण को एक बोला जाता है कि रस समुद्र। रस का मतलब जिसका एक स्वाद ऐसा हर पल हर क्षण जो एक अपूर्व चमत्कारिता का अनुभव कराता हो, इसी को ही रस बोलते हैं। और इसी ही रस के जो आश्रय है वो कृष्ण है, रस के जो विषय वो कृष्ण है। लेकिन इस रस को पान करने की, इस रस को टेस्ट करने की क्षमता किसमें है? इस रस को अनुभव कौन कर सकता है? इस रस का जो पान करने वाली है और पान कराने वाली है, कृष्ण के कराए श्याम रसपान ताते अलाधनी नाम। राधा रानी जो कृष्ण की अलाधनी शक्ति है, जो कृष्ण को आनंद देती है, जो रस स्वरूप कृष्ण, आनंद स्वरूप कृष्ण, जो खुद आनंद के स्रोत हैं, वही कृष्ण राधा रानी द्वारा आनंद को प्राप्त करते हैं। राधा रानी कृष्ण के प्रति क्या अनुभव रखती है? जैसे एक समुद्र के किनारे अगर बैठो तो निरंतर उसमें लहरियां आती रहती हैं, एक लहरी के ऊपर दूसरी लहरी, दूसरी के ऊपर तीसरी लहरी, कभी भी लहरियां शांत नहीं होती। ऐसे ही राधा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति एक ऐसा आकर्षण, एक ऐसा अनुभव है कि हर पल हर क्षण वो कृष्ण के नाम को ही ऐसा समझती है कि इससे पहले मैंने कभी ये नाम सुना ही नहीं। और ऐसा आकर्षण उसमें राधा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति अनंत कोटि सेवा की जो भावनाएं हैं, सेवा की जो लहरियां हैं, वो क्या करती हैं? उछाल उछाल मारती रहती है। ये राधा जी का स्वरूप है। और हम लोग जो कि चेतन अंश कृष्ण के जीव, हम सभी लोगों का जो आनंद है वो किसमें है? कुछ ना कुछ हम लोगों को हर पल हर क्षण एक नया अनुभव हो, कुछ नया हम लोगों को मिले, जो हम लोगों का जीवन कुछ ऐसा लगे कि आज कुछ नया, कुछ जीवन में कुछ नया फील हुआ। लेकिन हम उस नयेपन को हम खोजते कहां पर हैं? हम उस नयेपन को खोजते हैं इस संसार में जो कि सीमाबद्ध है, माया का है। माया का मतलब जिसका मापदंड है, जिसकी एक सीमा है। लेकिन इस सीमाबद्ध संसार में चेतन जीव जिसका स्वभाव है हर पल हर क्षण कुछ नया अनुभव करना, वो एक ना एक दिन वो दुखों के सागर में डूब जाता है। कुछ पल के लिए कुछ अनुभव करता है लेकिन वो पल फिर समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए जीव का भी जो आनंद है वो कैसा आनंद है? जीव को भी हर पल हर क्षण कुछ नया ही चाहिए, यही जीव का आनंद है, यही उसकी चेतना है। और इसी चेतन जीव को ही अपनी चेतना का विकास करना है, कॉन्शियसनेस बढ़ानी है अपनी, इसके प्रति जहां पर अनुभव में कभी भी विराम ना हो, नवीनता का कभी भी जहां पर विराम ना हो, ऐसे ही जीव ऐसे अनुभव में ही सुखी रह सकते हैं। और जब तक जीव को ऐसे राधा रानी की कृपा ना हो, क्योंकि ऐसा अपूर्व आनंद का जो अनुभव है, चमत्कारिताओं से भरा हुआ जो एक अपूर्व नवीनता का जो आनंद का अनुभव, वो श्रीमती राधिका जी ही उसकी ठाकुरानी है। ऐसे ऐसे अनेक अनेक भाव राधा जी के हृदय में आते हैं। तो हम लोगों का जीवन का जो आनंद है, उसकी जो सार है, वो श्रीमती राधिका जी ही है। तो हम लोगों को ऐसे आनंद को अनुभव करने के लिए श्रीमती राधिका जी की शक्ति इस जगत में स्वयं राधा जी की इच्छा से आती है और हम लोगों का गुरु रूप में हम लोगों को वो स्वीकार करती है और अपना शिष्य बनाकर हमें इसकी ट्रेनिंग देती है, हमको जलाती है कि ऐ जीवो, इस संसार में तुम जिस आनंद को खोज रहे हो वो आनंद आता है लेकिन उसके पीछे काल का प्रभाव है, दिखाई देता है लेकिन उड़ जाता है। इसलिए ज्यादा धोखे में मत रहो। गुरुदेव के रूप में वही श्रीमती राधिका जी इस जगत में हम लोगों को उस आनंद को हम लोगों को अनुभव कराती है और कैसे संसार से हम लोगों को अपने आप को बचा करके उस भाव की ओर ले जाना है, कैसे साधन करना है, कैसे भक्ति करनी है, इस सारे सारे के सारे साधन भक्ति को वो गुरुदेव क्या करते हैं? अपने आचरण के द्वारा हम लोगों को, अपने जीवन की शैली के द्वारा हम लोगों को वो करके दिखाते हैं। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सत्संग। गुरु जी के पास आकर के गुरु जी के ऐसे आचार विचार को हम लोगों को लेना है और उस पर चलना है। और गोल क्या है हमारा? गोल है सदा आनंद में रहना, सदा कुछ नया अनुभव करना, जिसकी ठाकुरानी कौन है? राधा रानी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।
बहुत अच्छा, बहुत ठीक। आप दो शब्द कहिए।
ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण की नमः। सततम अपने परम आराधितम ओम विष्णु पाद परमसुदेवराज गजवेष्टो भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत को भी अनुरोध ज्ञापन करता हूँ और उनकी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात त्रिवेणीगण अन्य वैष्णव वैष्णवियों के चरण रजत योग्य दंड स्वीकार कर। परसों की राधा अष्टमी का शुभ अवसर है। इस दिन राधा रानी जी प्रकट हुई थी इस जगत में। ऋषिवानुभावक को राधा रानी मिली थी सहस्त्र कमल दल के ऊपर किलकारी मारती हुई, ऋषभानु बाबा उनको देखा कोई और नहीं आसपास, बड़ी सुंदर कन्या है, अपने घर ले गए। एक बेटा तो था ही, एक बेटी लिया और कीर्ति भैया की गोद में दिया, वो बड़ी प्रसन्न हो गई। तो राधा रानी वास्तव में लेकिन हम उपासना करते हैं राधा कृष्ण की, रुक्मणी कृष्ण की नहीं करते। और कहते हैं लोग राधा जी उनकी विवाहिता पत्नी नहीं, कुछ लोगों का ऐसा ऑब्जेक्शन भी है। तो इस बात को समझाने के लिए भगवान ने जब रास लीला की और सुखदेव गोस्वामी जी भागवत में रास का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया, तब परीक्षित महाराज प्रश्न करे किया उन्होंने कि कृष्ण तो धर्म की स्थापना करने के लिए आते और यहां दिख रहे हैं कि दूसरों की पत्नियों के साथ कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, ये धर्म है क्या? तो देव गोस्वामी कहते हैं गोपियां और कोई नहीं, कृष्ण की स्वयं की शक्ति। जैसे एक बालक अपनी छाया के साथ खेले उसमें क्या दोष है? कोई अपनी छाया को प्रेम करे, छाया को प्यार से पुचकारे, गले लगाने का प्रयास करे, कोई दोष है? इसी प्रकार जितनी भी गोपियां हैं सब क्या कृष्ण की शक्ति है अपनी स्वयं की, और राधा जी सब गोपियों में सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण की आलादनी शक्ति जो कृष्ण को आनंद देती है, परम आनंद देने वाली राधा जी। वास्तव में राधा और कृष्ण एक हैं, कृष्ण ही लीला के लिए दो रूप धारण करते हैं, एक राधा एक कृष्ण। प्रेम के लिए दो चाहिए ना, तो प्रेम के आनंद लेने के लिए, और प्रेम होगा तो कितने कौतुक होंगे, कितनी लीलाएं होंगी, उस सबका आनंद लेने के लिए कृष्ण ही दो रूप बना लिए। तो वास्तव में राधा जी किसी और की नहीं है, पत्नी कृष्ण की अपनी शक्ति है। और कृष्ण की सबसे प्रिया है। रास में जब गोपियों को सभा के मध्य हुआ और राधा जी को क्या हुआ, मान हो गया कि कृष्ण सबके साथ नृत्य कर रहे हैं, मेरे साथ भी कर रहे हैं, एक जैसे, कोई अंतर नहीं आ रहा, अरे मैं विशेष हूं, तो उनको मान हो गया। तो कृष्ण सब गोपियों को छोड़ के राधा जी को लेके चले। तो देखे राधा जी कितनी महिमा, कृष्ण 100 करोड़ गोपियां थी, वो कृष्ण के मन को काबू नहीं कर सकी, एकमात्र राधा जी हैं जो कृष्ण को वश में करती। तो ये राधा जी की महिमा है, ये भागवत में दिखाई गई कि सब गोपियों को छोड़ के कृष्ण राधा जी। अब हम गुरु महाराज
बहुत सुंदर अल्प समय में बहुत सुंदर बोला, और माधव महाराज जी दो शब्द राधा जी के चरणों में पुष्पांजलि देंगे।
वंदे गुरु पद दंदन भक्त बिंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंद नंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपी जन समयुक्त वृंदावन मनोहरम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदेव गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य वर्ज अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत प्रति दंडवत प्रति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समागत वैष्णववृंद गौरवत प्राण सज्जनवृंद मातृमंडली को मैं यथाजगत दंडवत प्रणाम एवं अभिनंदन। आप लोग श्रद्धाष्टमी के शुभ उपलक्ष्य पावन पर्व पर योजना स्थिति में श्रवण कर रहे हैं राधा जी की महिमा। हमने जो गुरु के श्रीमुख से सुना, जब स्वयं भगवान कृष्णचंद्र गोकुल में जन्म लिया और मथुरा में प्रकट भए। नारद जी की इच्छा हुई जब कृष्ण आते हैं कि अकेला तो आएंगे नहीं, क्यों, वो तो अपने सौक्ष्म शक्ति के साथ रहते हैं, तो जो होना हो उनकी लादिनी शक्ति, उनकी पराशक्ति कहीं ना कहीं प्रकट हुई होंगी, तो ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते रावल में आए, जो नंदोवा के परम मित्र विश्वनुमार के राजमहल में आए। नारद से आते ही उनको अभ्यर्थना की, नारद से पूछा, हे राजन, आपका कोई संतान है? विश्वनुमार श्री राम सभा को लाके दिखाया। नारद जी ने कहा, हे राजन, तो दो चार दिन में कोई बच्चा हुआ होगा? बोला, हाँ एक लड़की हुई है, रचन को लाइए, मैं इनको हस्तरेखा विचार करूंगा और उनका आशीर्वाद दे दूंगा। ले आए, देखते ही नारद जी पहचान लिया कि ये कृष्ण की लादिनी शक्ति है। तब कहे, राजन, इनके आशीर्वाद के लिए मुझे दूध की घास, अक्षत, दही, कुछ सामान के लिए बता दिया ताकि थोड़ा उनको समय लगे। विष्णु बाबा ये सामान इकट्ठा करने के लिए अंदर गए और नारद जी ध्यान करने लगे। इतने में राधा जी अपने अश्वसुखियों के साथ किशोर रूप में, किशोरी रूप में उनको दर्शन दिया। ललिता देवी ने कहा, ओ नारद जी, क्या कर रहे हो? किशोर जी सामने प्रकट है, जो स्तुति करना है, पूजा करना है, कर लो। नारद जी स्तुति की, करते ही विष्णु बाबा के आने का समय हुआ, वो अंतर्धन हो गई। ठीक जैसे पहले बालिका रूप में थी, उसमें भी अश्वसुखी भी नहीं रही और अधिक किशोर मूर्ति नहीं रही, अकेली रही। फिर उनको आशीर्वाद दिया, चले गए। ऐसे राधा जी कृष्ण लादिनी शक्ति है और कृष्ण कुछ भी करते हैं केवल इच्छा करते हैं, पूरा कौन करती है? राधा जी करती है। कृष्ण शक्तिमान है, शक्तिमान को इच्छा शक्ति पूरा करते हैं। अभी आप लोग गोकुलपति प्रभु सुन रहे थे कि कृष्ण की रासलीला, कृष्ण क्यों रास किया, उसका कारण क्या है? राधा जी की महिमा जगत को दिखाने के लिए रास रचाया था और कुछ कारण नहीं था। कृष्ण में जितने प्रकार के लीलाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ रासलीला है। कृष्ण खुद कहा अपने श्रीमुख से, संति यद्यपि राज्य लीलास्तता मनोहरा, नहीं जाने स्मृति राशि मनोमय विदूषण भवे। मेरा बहुत से लीलाएं हैं, सब लीलाएं जगत के मन को हरण करता है। ये रासलीला ऐसे एक लीला है, मैं अपने को खो बैठता हूँ, मैं समझ नहीं पाता मैं क्या कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। राधा जी रास की श्रृंखला है, वो सबको कंट्रोल करती है। और भक्त लोग क्या करेंगे? भक्त लोग कृष्ण को, यद्यपि हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम, भक्त लोग जो गौड़ीय वैष्णव है वो कृष्ण को इतना उनको विनय नहीं करते हैं, क्योंकि यदि आपको बुलाना है आपको कान खींचने पर अपने आप पूरा बड़ी आ जाएगा। ऐसे राधा जी के प्रेम में कितने इतने वशीभूत हैं, और आप राधा जी का चरण पकड़ लेंगे, उनके आश्रय लेंगे, कृष्ण कहीं दूर नहीं है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव मन कहते हैं, भक्ति में न कृष्ण चरण यही न करो विचार तीन, राधा पदम बुजा कन सहसेना, तस्सा त्रिगांचल निपात विशेष अवेदता, द्वैवाद मई कर सती दासी बुद्धि। गौड़ीय वैष्णव कह रहे हैं, मैं भक्ति न कृष्ण चरण ही न करोमी चाहती, मैं भगवान कृष्ण चरण में भक्ति भी नहीं करना चाहता और कोई प्रार्थना भी नहीं। और दूसरे कोई पूछ रहे, क्यों भाई तुम ऐसे घमंडी क्यों बन गए, क्या कारण है? जब आप कृष्ण के लिए चाहते हैं तुम कृष्ण को ऐसे कह रहे, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा और भक्ति भी नहीं, क्यों? तो बताया, राधा पदम जन साहस न, राधा जी के पाद पद्म के धूल के बल पर मैं कृष्ण को नहीं गिनता हूँ, नहीं गिनती हूँ। यदि राधा जी कभी मुझे दासी के अंदर गंती कर ले तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, कृष्ण वशीभूत होने के लिए बाध्य है। क्यों? अस्तम से कहा गया, राधा प्रजाति विपिनम प्रजाति, राधा सुखे सुखम उपेक्त दुखे च दुखी, कृष्ण कदापि करति सजन स्वतंत्र। राधा के आज जब राधा जाती है निकुंज में, कृष्ण भी पहले तो पहुंच जाते राधा की सेवा के लिए। राधा सुखी है तो कृष्ण सुखी है, राधा जी दुखी है तो कृष्ण दुखी है। इसलिए राधा जी के चरणाश्रय करने पर कृष्ण अपने आप वशीभूत हो जाएंगे। राधा जी की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तब बताया, राधा सम्मुख संशक्ति सखी संग निवासिनी, तम अहम सततंग वंदे माधवाश्रय विग्रहम।
राधा सम्मुख संशक्ति, राधा जी की सेवा के लिए सबसे योग्य कौन है? गुरुपाद पद्म है कौन? माधवाश्रय विग्रह, माधव तो विषय विग्रह है और गुरुपाद पद्म क्या है? माधव के आश्रय विग्रह है। हम इससे पहले सुना कि राधा जी गुरु के रूप में आते, यह बात नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद अपने भागवतामृत में लिखा है, सदगुरु को राधा जी जगत में प्रेरण करती है, ये अंतिम अध्याय में इसका वर्णन दिया गया, तो सनातन गोस्वामी ने किया है। जो गुरुपाद पद्म कौन? माधव के आश्रय विग्रह है। उस आश्रय करने पर माधव भी वशीभूत होंगे और राधिका भी वशीभूत होंगी। तो क्या क्यों क्या करते हैं? निकुंज जूनो रति के सिद्ध जा जल्दी युक्ति अपेक्षणीय सरस्वती वल्लभ वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री विश्वनाथ को ठाकुर पाद बताया कि निकुंज जूनो रति के सिद्ध, निकुंज जून अर्थात किशोर किशोरी दोनों को मिलाने के लिए गुरुपाद पद्म क्या करते हैं? अपने अपराधिक शरीर में उनको रमण कराने के लिए अश्वती से युक्ति करती है, करके चंद्रावली के रूप में होंगे कृष्ण कभी उनके लेकर के ऐसे मिलाती है। जैसे उदाहरण देकर के विषय को मैं स्पष्ट करके मैं अपने भक्तों को विराम दूंगा। इसी समय कृष्णचंद्र और कोई थे पद्मा चंद्रावली की सखी लेकर के उनको गौरी कुंड में ले गई और चंद्रावली पद्मा सबसे हंसी मजाक चल रही है और राधा जी दुखी है। तो रूप मंजरी रोटी मंजरी रमन मंजरी राग मंजरी सब मिलकर युक्ति करके रूप मंजरी के भेजा। रूप मंजरी गौरी कुंड के आकर के ऐसे नाटक किया कि मोरी मोरी जैसे बेहोश हो गई। क्या हुआ? सोखिया उनको चंद्रावली सोखिया उनको पानी दिया, होश में आया, कुछ बोलना चाहती फिर बेहोश हो जाती। ये दिखावा बेहोश है, सच कुछ बेहोश नहीं है। तो किशोर क्या हुआ बोलने से फिर बेहोश है? किशोर माफ हो माफ हो डरो मत डरो मत। तब रूप मंजरी ने बताया, आज एक विशाल आकार असुर बछड़े का रूप बना करके बछड़े के अंदर प्रवेश कर लिया। जो ही बछड़ा उनके सामने जाता है सुन करके पूंछ उठा करके मुख फाड़ करके भाग जाता है। जल्दी जाने देख भी बछड़ा बचेगा नहीं, पर किधर है? राधा कुंड को दिखा दिया। तो बोले चलो, बोले मैं नहीं जाती। बोले क्यों? बोले असुर को पता चल जाए कि मैं तुम्हें खबर दिया, असुर मुझको मार देगी मार देगा, इसलिए मैं नहीं जाता। चंद्रावली पद होता है दूर से दिखा देना। रूप मंजरी को चुप होकर होता है, हाँ ये तो कर सकता, बहुत दूर से दिखाऊंगा, नजदीक से नहीं। राक्षस चलो कृष्ण को निकाल के ले आई, आगे कह रहे चलो आज तुम तो रंग हाथ में पकड़ में आ गए हो, आज मजा चखाती हूँ चलो। कृष्ण ने कहा देखो मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ, स्वामी जी को नहीं कहना। तब रूप मंजरी ने कहा हाथ जोड़ना ही काफी नहीं है, तो मैं पैर पकड़ता हूँ। तो पैर पकड़ना है तो स्वामी जी को पैर पकड़, स्वामी जी का पैर पकड़ो, मेरा पैर पकड़ो से फायदा भी नहीं है और स्वामी जी का पैर पकड़े ना तुम्हारा खैर भी नहीं है। ऐसे कर ले आकर के राधा जी के साथ मिलाया। ऐसे जो गुरुवर्ग हैं सदगुरु, ये क्या करते हैं? सुख के साथ युक्ति करके राधा जी से मिलन कराती है। सबसे पहले मैं गुरुपाद चरण प्रणाम करता हूँ, उन्हीं की कृपा होने पर कभी रूप मंजरी कृपा जीवन की कृपा ये तो बहुत दूर है, पहले गुरु की कृपा प्राप्त करूँ तभी ये संभव होगा। हरे कृष्ण पंचाकल्प के रूप में कृपा सिंधु प्रतिदानंद पावन भो वैष्णव भो नमो।
बहुत अच्छे इन्होंने उनके जन्म के संबंध में बतलाया, जो किस प्रकार से रावल में जन्म लिया, नारद जी किस प्रकार से गए उनकी चरण वंदना की। आज हम लोग राधाष्टमी के ही संबंध में राधा तत्व के ऊपर में विवेचन कर रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम द्वापर युग के अंत में कृष्ण वृंदावन में रासस्थली बंसीवट में प्रकट हुए। यदि राधा जी न हो, उनकी शक्ति न हो, तो कृष्ण निर्विशेष है, उनका कोई महत्व नहीं। कृष्ण का महत्व राधा जी से है, शक्ति से है, कृष्ण शक्तिमान है। तो उस समय में उनके बाएं अंग से श्रीमती राधिका विलास के लिए आनंद के लिए परस्पर राधा जी निकली और दाहिने अंग से गोपेश्वर महादेव गुरु के रूप में, गोपेश्वर जी गुरु के रूप में। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण ही।
क्या बज रहा है, क्या बज रहा है, कौन रखा?
राधा के बिना, राधा जी के बिना कृष्ण कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, कैसे उठाया? दाहिने हाथ से नहीं, बाएं हाथ से, और बाएं हाथ से में भी बाएं अंगुली। तात्पर्य क्या? कृष्ण के बाएं तरफ में राधिका जी हैं, उन्होंने उठाया। कृष्ण में शक्ति न रहे तो निशक्ति का आदमी, निर्बल आदमी क्या गोवर्धन पर्वत को उठाएगा? इसलिए राधा जी ने ही गोवर्धन पर्वत को उठाया। जितनी भी लीलाएं करते हैं असुरों को संहार इत्यादि, सब राधा जी से होता है। उनकी कृष्ण की प्रत्येक इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। राधा जी शक्ति हैं, कृष्ण शक्तिमान हैं, दोनों एक हैं। विलास के लिए वो दो होते हैं, कोई अंतर नहीं। सूरज में और प्रकाश में कोई अंतर नहीं है। सूरज रहेंगे उनका प्रकाश रहेगा, अब रात होने वाली है सूरज नहीं दिखाई पड़ते, छाया के वजह से वो पृथ्वी के दूसरे तरफ में चले गए, किंतु इस समय भी उनका प्रकाश है। और सूरज कभी भी अस्त नहीं होते, केवल घूमते रहते हैं, या पृथ्वी घूमती है, चंद्र घूमते हैं, इसलिए रात में दिखाई नहीं पड़ते हैं। किंतु और जैसे अग्नि है और उसकी दाहिका शक्ति है, अग्नि में दाहिका शक्ति न हो तो समझो जो क्या है, भस्म है, राख है। आग जलाएगी तभी तो आग है, जो आग जलाएगी नहीं। कभी कभी पर्वत में धुआं सा दिखाई पड़ता है, आग थी किंतु वर्षा से बुझ गई, किंतु धुआं निकल रहा है। इसी तरह से समझना चाहिए, राधा और कृष्ण विलास के लिए दो हैं, बिना राधा का वो कृष्ण कुछ नहीं कर सकते। दो उदाहरणों के साथ में ये दिया के बतलाया गया। राधा जी के लिए बतलाया गया है, जस्या कदापि वसनांचलो खेलो नोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि जोगेंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनों की तस्या नमस्त विषभान भूवो दिशे। किसी समय में राधा जी मान कर बैठी हैं और राधा कुंड के दूसरे किनारे पर, चलिए दूसरे तट पर, और इस कृष्ण पर है, तट पर है। कृष्ण उनके लिए विरह में मग्न है। जस्या कदापि वसनांचल, उस समय में राधा कुंड के उधर से हवा का झोंका आया और राधा जी के बसन से, वसनांचल से, अंचल से वो स्पर्श कर लगे। उसका सुगंध लेकर जब कृष्ण के पास में वो हवा आई सुगंधी, तो कृष्ण राधा जी के अंगों का सुगंध जानते थे। कृष्ण को मत वाला बना दिया। कृष्ण ने अपने को धन्य धन्य माना। जब ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यः वशीकरणे चूर्णम् अनंत शक्तिम् तं राधिका चरण रेणुम् अनुस्मरामि। ब्रह्मा जी नारद जी जब ब्रह्म सुक नारद आदि ये भीष्म बड़े बड़े महारथी भगवान के प्रिय सब सेवक हैं, भक्त हैं, किंतु उनके लिए भी कृष्ण के चरणों को दर्शन करना बड़ा कठिन है। और वो यदि कृष्ण जान जाए या राधिका जी का चरण की रेणियों को ये ध्यान करता है, उसकी सेवा करता है, इतना ही जान ले तो बस वशीभूत हो जाते हैं, उसको कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं। मैं राधा जी की सेविका हूँ, मैं उनकी चरणों की सेवा कर रही हूँ या चाहती हूँ, इतना बस चाहने के साथ ही साथ कृष्ण वशीभूत हो जाते। वेणु करान निपतित खलितं शिखंडम भ्रष्टंच पीत वसनम वजराज सुनु जस्या कटाक्ष सर्गात विमोचितेन तं राधिका परिचरान कदा रसेन। जिनके दर्शन मात्र से कृष्ण का मन उनके पास में नहीं रहता, उनके हाथ से वेणु गिर जाती है, वेणु को कभी बंसी को कभी नहीं छोड़ते, प्राण के समान है वो वेणु, गिर गई। सिर का मुकुट, मोर मुकुट सब समय धारण कर, वो भी गिर गया राधा जी के चरणों में। और जिनके कटाक्ष से कृष्ण मूर्छित हो रहे हैं वो राधा जी की, हम प्रबोधानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, हम उनकी ऐसी रसमयी सेवा रस के साथ में कैसे, रस जानने के लिए तो फिर उज्जवल नींद मनी जानना पड़ेगा रस क्या होता है ना। रस के साथ में राधा जी के भावों का नाम ही रस है, उसका कुछ अगर अनुगमन अनुसरण कुछ कुछ संभव है, पूरा तो संभव नहीं। जत किं करीश बहुस खलु कागवानी नित्यम परस्य पुरुषस्य सुखंड मौली जस्य कदा रसिन्धे विषमानुजाया ततकेली कुंज भवनांगन वाली। राधा जी की बात तो छोड़िए, उनकी किंकरी रूप मंजरी इत्यादि द्वार पर, कुंज के द्वार पर खड़ी हैं। राधा जी ने कह दिया जे काला हमारे पास में आज ना आए, रूप मंजरी रति मंजरी द्वार पर खड़ी हैं और कह रही हैं काले तुम जा नहीं सकते, उनकी पहिया पड़ते हैं, पहिया मैंने पैरों को पकड़ते हैं, निहोरा करते हैं, मुझे जाने दो, और कहते आज नहीं जा सकते। ऐसे जो विश्व ब्रह्मांड के नायक के नायक सर्वसरेश्वर सर्वशक्तिमान कृष्ण जिनकी किंकरियों के चरणों में गिरते हैं, उन राधा जी के कुंज में बहारने के लिए, झाड़ू देने के लिए मैं कब एक सींक बन जाऊं, ये मर, ये राधा जी की महिमा है। अभी रामचंद्र जी बतला रहे थे कृष्ण को यदि किसी प्रकार से प्रसन्न कर लिया और कृष्ण यदि कहते हैं कि वर मांगो, क्या चाहते हो, हमारी सेवा चाहते हो, तो प्रभु आप अपनी प्राण प्रिया विश्वभानंदिनी उनकी चरणों की सेवा हमें दे दी, इसके अतिरिक्त हमें कुछ और नहीं चाहिए। कृष्ण की सर्वोत्तम रास लीला है, लीला चक्रवर्ती चूड़ामणि है। कृष्ण ने रास क्यों किया, बंसी बजाई पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा थी, बंसी बजाई, यशोदा जी ने नंद बाबा ने नहीं सुना, सखाओ रे नहीं सुना, ब्रज में हजारों मातृ सम्मान गोपियां थी, गोप थे, सखा थे, किसी के कान में नहीं गई, वो गई कहां सीधे, उनके जो प्रियाय थी उनके कानों में, और वो प्रियाय क्या किया, कोई अपने को स्नान करके श्रृंगार कर रही, जब ही बंसी बजी तभी गले का हार कमर में, कमर का कहीं गले में, पैरों के और नीपुर कहीं हाथ में, इस प्रकार से दौड़ी। जो अंजन कर रही थी वो एक आंख में अंजन किया, दूसरी अंजन आंखों में करना भूल गई, वो ऐसे ही दौड़ी। कोई अपने पति की सेवा कर रही थी वो छोड़ दिया, कोई दलिया पका रही थी, दलिया जानती हो, दलिया पका रही थी, पक गई है, उसको चूल्हे पर ही छोड़ दिया, चल पड़ी। इस प्रकार से उनके पतियों ने मना किया कि कहां जा रही हो, उत्तर देने का समय नहीं, भागी चली, एक दूसरे से भी बोली नहीं, चली गई। रास किस लिए किया, ये राधा जी की महिमा दिखलाने के लिए। कृष्ण की लाखों गोपियां हैं, प्रियाएं हैं, वो राधा जी की काय व्यूह हैं, राधा जी मूल हैं, और उनकी काय व्यूह इतनी गोपियां हैं। यदि किसी लता में पत्ते फूल मंजरी न हो तो लता तो सूखे देखेगी, यदि उसमें पत्ते हो, उसमें फूल हो, मंजरी हो और हवा के झोंके आए तो बड़ी भली सुंदर लगती है। ऐसे ही राधा जी अकेले नहीं, अपना काय व्यूह किया, करोड़ों जूथ के जूथ बन गई, रास आरंभ हुआ। रास में अंतर ध्यान हुए, भागवत में स्पष्ट रूप से पहले नहीं दिया, पीछे बतलाया। गोपियां ढूंढने लगी, बावरी हो गई, पगली। ढूंढते ढूंढते देखा जी एक जगह बालू के ऊपर में कृष्ण के चरण हैं, ओ इधर ही गए हैं, तो इधर ही चल रहे थे। थोड़ी देर में जो आगे बढ़ी तो देखा जी कृष्ण के चरणों के बीच में किसी एक गोपी के बड़े कोमल छोटे छोटे पैर हैं। ये किसका पैर है? राधा जी की जो सहेलियां ललिता विशाखा थी, वो तो बहुत बार उनके चरणों की सेवा की है इसलिए जानती थी, वो बड़ी खुश हुई, ओ हमारी सहेली को ले गए हैं। किंतु दुख हुई इसलिए कि हम लोग उनकी सेवा नहीं कर सके राधा कृष्ण की, और दूसरी जो विपक्ष की और सब जो गोपियां थी, ओहो अन्याराधितो नीनो भगवान हरिश्वर जन्नो बिहाय गोविंद जाम आने यात्रा। ओहो इसने नारायण भगवान की सेवा की होगी इसलिए जरूर नारायण ने बर दिया होगा, उसके प्रभाव से कृष्ण के साथ में ये गोपी जा रही है। किंतु है कौन? क्यों ललिता विशाखा ने अब आगे जाकर के पीछे देखी तो इसमें राधा जी की महिमा है। कैसे? सुखदेव गोस्वामी के आराध्य राधिका थी, राधा जी की आराधना अपना इष्ट देव मानते। यदि राधे कह देते तो 6 महीने की मूर्छा हो जाए, इसलिए भागवत में डायरेक्ट रूप से उनका नाम नहीं दिया। किस रूप में नाम दिया? अन्याराधितो, जो आराधना करती है। आराधना में राधा धना राध से ये बन गया आराधना, इसलिए इस रूप में दिया। ऐसे ही और दो चार जगहों में इंगित से राधा जी का नाम दिया है, ललिता विशाखा इत्यादि का भी नाम नहीं दिया है, किंतु टीकाकारों ने उसमें आविष्कार किया है कि ये ललिता थी, ये विशाखा थी, ये चित्रा थी, ये चंद्रा थी, ये पद्मा थी, ये सब। इसलिए रासलीला का उद्देश्य यही था। और गोपों के लिए कृष्ण ने कहा, न पारे हम निर्बद्ध संजुजा, मैं ब्रह्मा की करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु पाकर के भी हे गोपियों तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। क्यों? दुर्जर गृह श्रृंखला, तुमने घर की श्रृंखलाओं को तोड़ दिया, पतियों को छोड़ दिया, घर गृहस्थी लोक लज्जा गुरुजनों की आज्ञा सबको तोड़ मरोड़ कर वंस कर कृष्ण से मिलने के लिए आई हो, हमसे मिलने के लिए आई हो। तुम्हारा तुम साधु हो, अपनी साधु वृत्ति से यद्यपि तुम हमें ऋण से उऋणी कर दोगी, किंतु मैं तो तुम्हारा चिर ऋणी रहूंगा। ये सब गोपियों की महिमा और राधा जी की महिमा है। आज यही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और राधा जी के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। महामंत्र कीजिए।